अस्सलाम वालेकुम, ये पार्ट नंबर 6 है। आज हम आपके लिए किताब रिकॉर्ड कर रहे हैं, जासूसी दुनिया, जिल्द नंबर 26, नावल नंबर 79, चांदनी का धुआं, जिसके मुसनिफ हैं इब्ने सफी। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 6। रुक जाओ और टॉर्च बुझा दो, इससे कहा गया, और साथ ही राइफल की नाल इसकी कमर से आ लगी। घर में अंधेरा हो गया और इसने दूर होते हुए कदमों की आवाजें सुनी। शायद इनमें से किसी एक कहीं जा रहा था। हमीद चुप खड़ा रहा और राइफल की नाल इसके कमर से चिपकती रही। कुछ देर बाद फिर कदमों की आहटें हुई। गालबन दो आदमी थे। फिर यक बेग पूरे गार में रोशनी हो गई। ये एक छोटे से फौजी सर्च लाइट की रोशनी थी। हमीद को फौजी जवान के साथ एक ऑफिसर नजर आया, जिसके शाने पे लगे हुए सितारे बता रहे थे कि वो कप्तान का एहदा रखता है। पक्तन आसिफ ने गर्रा कर कहा, यहाँ क्यों लाए हो, वहीं ढेर कर दिया होता। अब तो हमीद सचमुच ताव में आ गया। अजनबी, हमीद को ताव आने लगा। मतलब यही होता है कि जो कुछ ना हो जाए थोड़ा है। वो चंद लम्हे इस कैप्टन को खूनख्वार नजरों से घूरता रहा। फिर बोला, तुम कैप्टन हमीद ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से हल कलाम हो? ओ, आसिफ ने सीटी ऑफिसर ने सीटी बजाने वाले अंदाज में अपने होंठ सिकुड़े और ये फिर यकबेक अपने मातहतों को देखकर घबराया। इसके हाथ पैर बांध दो। तुम होश में हो या नहीं? मैं बिल्कुल होश में हूँ दोस्त, ऑफिसर मुस्कराया। मुझे इतला मिल चुकी है कि नाम का एक फराड यहाँ आ रहा है। तब तुम बिल्कुल होश में नहीं हो, हमीद बेसाख्ता हंस पड़ा। अच्छा चलो ये बताओ कि ये असल इतला तुम्हें कहाँ से मिली? इसी महकमे के एक ऑफिसर कर्नल फरीदी की तरफ से, हमीद ने महताना अंदाज में पलके झपकाई। ऑफिसर संजीदा था और इसने ये बात पूरी संजीदगी से कही थी। इसके दोनों महतहतों ने झपट कर हमीद के दोनों हाथ पकड़ लिए। हमीद की समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करना चाहिए। इसका ख्याल था कि मुमकिन है कि फरीदी की किसी स्कीम का कोई खास मरहला रहा हो, मगर वो झंझलाट में जरूर मुब्तला हो गया था। आखिर इसे पहले से आगाह क्यों नहीं किया गया? अब अगर वो यहाँ किसी किस्म की हमाकत शुरू कर दे तो फरीदी साहब की वो स्कीम कहाँ होगी? इसका दिल तो चाहा के टकर जाए इन फौजियों से, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश होकर रह गया। इन्होंने निहायत इम्तिनान से इसके हाथ पुश्त पर बांधकर इसे एक बड़े पत्थर पर धकेल दिया। बड़ा वहशियाना अंदाज था। हमीद बाल बाल बचा, वरना इसका सर ही इसी पत्थर से टकराकर पाश पाश हो जाता। वो पत्थर से लड़खड़ाता हुआ अपने दाएं बाजू के बल जमीन पर आ गिरा। अब तुम दोनों अपनी जगहों पर जाओ, ऑफिसर ने महतहतों से कहा, और वो एड़ियों पर घूमकर घर से निकल गए। ऑफिसर टहलता हुआ हमीद के करीब आया, चंद लम्हे खड़ा इसे घूरता रहा, फिर आस्था से बोला, कर्नल फरीदी कहाँ है, जहाँ से इसने तुम्हें इतला दी थी? हमीद घबराया, वो खुद क्यों नहीं आया? खेल कूद से नफरत है इन्हें, हमीद बोला। मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा, वरना इसके आना आने की वजह बताओ। जरूर उतार दो, वक्तन किसी गोशे से आवाज आई और ऑफिसर उछल कर आवाज की तरफ मुतवज्जा हो गया। फिर यही जुमला किसी दूसरे गोशे से कहा गया और ऑफिसर मुड़कर इधर देखने लगा। हमीद महसूस कर रहा था कि यही आवाज मुतरद तरफ से आ रही है, लेकिन आवाज एक ही आदमी की थी। तुम कौन हो, सामने आओ, ऑफिसर गरजा, तुम्हारी यह आरजू भी पूरी हो जाएगी। आवाज आई और फिर इसी पत्थर की ओर से एक आदमी छलांग लगाकर सामने आ गया, जिस पर हमीद को धकेला गया था। बिल्कुल ऐसे ही लगा था जैसे वो उड़ता हुआ इस ऑफिसर पर जा पड़ा हो। दोनों ही जमीन पर ढेर हो गए, लेकिन नौदार जल्द ही न सिर्फ खुद उड़ गया बल्कि गिरबान पकड़कर इसे भी अपने साथ खींचता हुआ चला आया। फिर ऑफिसर संभल भी न पाया था कि इसके जबड़े पर जोरदार घुसा पड़ा और वो लड़खड़ा कर दूर जा गिरा, लेकिन फिर उठकर दो दाने छपका। इस बार नौदार ने झकाई देकर इसे अपनी पुष्प पर लादा और चटखारे दार। फिर वो बेचारा सिर्फ पैर ही मारता रह गया। गालबन ये उठने की कोशिश थी, क्योंकि जहन काबू में नहीं रहा था, रह गया था, इसलिए इस इरादे की एनर्जी यानी कसम की जिस्मानी हरकतों में सिर्फ हो रही थी। फिर आस्ता आस्ता वो साकत ही हो गया। हमीद ने अभी अपने हाथों को आजाद करने की जद्दोजहद शुरू कर दी। इसी दौरान वो अजनबी भी बेहोश होकर ऑफिसर को वहीं छोड़कर किसी तरफ गायब हो गया। क्या वो फरीदी था, हमीद ने सोचा, लेकिन अगर फरीदी होता तो इसे वहाँ क्यों छोड़ गया होता। कुछ देर बाद इसने कदमों की आहट सुनी और फिर वही अजनबी एक गोशे में खड़ा दिखाई दिया, मगर वो हमीद की तरफ से बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहा था। कप्तान हमीद ने कहा, अरे यार जरा दो चार हाथ मुझे भी झाड़ देते जाओ, काफी अरसे तक एहसान मंद रहूंगा। वो मुस्कराया और बोला, मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, बशर्ते कि तुम इस बेहोश आदमी को कुछ दूर तक अपनी पुश्त पर लाद कर चलने का वादा करो। इसके पूरे खानदान को हमीद सर हिलाकर बोला, पहले तुम मेरे हाथ तो खोलो। इसने आगे बढ़कर हमीद के हाथ खोल दिए। कहाँ चले गए हो, इसने बेहोश ऑफिसर के करीब पहुंचकर कहा। उठाओ तो, हमीद ने इसे अपने पुश्त पर लाद लिया और अजनबी के पीछे चलने लगा। वो अपने हाथों पर सर लाद संभाले हुए था। एक बार फिर हमीद को वैसे ही तंग दूर से गुजरना पड़ा जैसे दूर किनारे से गुजरा वो इस गार में पहुंचा था, मगर मंजिल ज्यादा दूर साबित नहीं हुई। वो जल्द ही एक ऐसे गार में पहुंच गए जहां मुख्तलिफ किस्म का सामान बिखरा पड़ा था। इसे यहां कहीं डाल दो, अजनबी ने कहा, और सादतमंद गधों की तरह एक तरफ बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, हमीद बुरा सा मुंह बनाकर बोला, तो क्या आप समझते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं था। अगर मैं आप अब भी अपनी आवाज को काबू में ही रखता तो तुम्हारे फरिश्ते भी ना पहचान सकते। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। तो ये फरीदी ही था, हमीद सोच में पड़ गया। वो इसके अलावा और हो सोचता भी क्या, इसे और आसिफ को कुर्बानी के बकरों की शक्ल में बतौर अवल पहले ही रवाना कर दिया गया था। फरीदी बेहोश आदमी को बगौर देख रहा था। ये कौन है, हमीद ने पूछा। चौकी के ऑफिसरों के भेस में कोई, फरीदी ने कहा, और आप अचानक यहाँ कैसे पहुँचे। ये भी एक किस्म का आसेबी खलल है, फरीदी अपनी बाएं आंख दबाकर बोला। तो आपको सब कुछ मालूम है, सिर्फ इतना ही कि वो कमरा आसिफ ज़दा है जिसमें तुम लोगों ने कदम जमाया था, वहाँ तुम्हें आवाजें सुनाई देती थी, बस इतना या और कुछ भी। और क्या बताना चाहते हो, फरीदी मुस्कराया। क्या आपको लिस्ट पर कभी कर्नल वार्डर भी रहा था। तो नहीं, मगर अब आ गया है। लेकिन तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या आपको इल्म है कि इसके कब्जे में रुए हैं। हाँ सुना है, मैं और आसिफ इस कमरे में किसी औरत की आवाज सुनते रहे थे, फिर एक दिन मुझे मालूम हुआ कि फोन पर मेरी ट्रंक कॉल है। मैं समझा आप होंगे, लेकिन फोन में भी इसी औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, मैं चराही हूँ, इंटरनेशनल आर्ट गैलरी एग्जीबिशन बोल रही हूँ। और फरीदी ने होंठ सुकड़े और हमीद की आंखें देखता हुआ कहा, फिर मुस्करा कर बोला, ये एक बड़ा दिलचस्प लतीफा है, किसी वक्त इत्मीनान से बताऊंगा। इसी चराहे की बदौलत हम इतनी तेजी से रफ्तारी से किसी खास समेत बढ़ रहे हैं, वरना बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता। क्या मतलब, ओ तो तुम नहीं मानोगे। खैर ठहरो, पहले मुझे कुछ मालूम करने दो। ये बेहोश आदमी के मेकअप में है और शायद ये जगह ऐसे कामों के लिए मखसूस है, लिहाजा यहाँ मेकअप का सामान जरूर होना चाहिए। हमीद चुपचाप खड़ा रहा और फरीदी इधर उधर देख बिखरे सामान में कुछ तलाश करने लगा। आखिरकार इसे एक लकड़ी का वो संदूक मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। इस संदूक में मेकअप का सामान मौजूद था। बस फिर वो आदमी घंटों के अंदर ही अंदर बेहोश आदमी की नकल तैयार हो गई। इसके बाद फरीदी नीले रंग की बोतल संभाले हुए बेहोश आदमी की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसमें कोई कोई ख्याल चीज थी, गालबन वो बेहोश आदमी का मेकअप खत्म करना जा रहा था। जरा ही देर में हमीद ने बेहोश आदमी की शक्ल देख ली। एक वजीह नौजवान था, बुढ़ापे के सारे अनसुई आसार लिक्विड अमोनियम से धुल गए थे। ये कौन हो सकता है, हमीद बड़बड़ाया। चराही की कोई भेड़, फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला, शायद हिफाजती चौकी के कमांडर मार डाला गया है। अच्छा देखो, तुम इस दौरे से निकलते ही बाएं जानेब मुड़ जाना, इस तरह तुम पर एक दौरे में दाखिल हो गए, वो दौरा तुम्हें एक खुली जगह पर ले जाएगा, वहां पहुंचकर तुम तीन बार इशारा देना, फिर चुप जा वापस आ जाना। कौन सा इशारा? उल्लू वाला। हमीद दौरे पर की तरफ मुड़ गया। एक मिनट के अंदर ही अंदर वो खुली फजा में पहुंच गया। ठंडी हवा के झोंके इसके जिस्म से टकराए और इसके आंखों में नींद की अंगड़ाइयां लेने लगी। कुछ अजीब मसूर कुन फजा थी, सर पर तारे भरे आसमान था और नीचे तारीख गहराइयां। इसने तीन बार उल्लुओं की आवाजें निकाली और फिर दरे में मुड़ गया। इतनी देर में फरीदी इसी बेहोश आदमी की वर्दी भी पहन चुका था। हमीद चंद हमें खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, क्या वो दोनों सिपाही इस वक्त वहाँ मेरे ही मुंतजर थे? नहीं, वो वहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है जिसके जरिए वादी तक पहुँचना मुमकिन है। ये भी तो महज इत्तेफाक था कि मैं पहुँचकर खामखा नीचे उतरने लगा। ये इत्तेफाक तुम्हें दूसरी दुनिया में भी पहुँचा सकता था, मगर खैर, मैं तो समझा था शायद तुम्हारे जहन में वैरानी पुरानी छिपकली खलबलाई है। बहरहाल मैं तुमसे ज्यादा फासले पे नहीं था, अगर छिपकली ना खलबलाई तो आप इस वक्त यहाँ होते? और ये हमीद बेहोश आदमी की तरफ इशारा करके बोला। और फिर ये चौंक पड़ा क्योंकि इसने कदमों की आहटें सुनी थी। परवाह ना करो, फरीदी हाथ उठाकर बोला, अगर ये वर्दी में होंगे तो तब भी मेरे ही आदमी होंगे, और अगर निकाबों में होंगे तो फिर तुम जानते ही हो। ब्लैक फोर्स हमीद ने बुरा सा मुंह बनाया। गार में दाखिल होने के वाले तीन निकाब पोश थे, इन्होंने पहाड़ी मेहनती इस्तेमाल के लिबास पहन रखे थे और इनकी पट्टों से छोटी गदाएं और दूसरे औजार लटक रहे थे। कंधों पर कई किस्म के थैले बार थे। शाहकार, फरीदी ने अपनी असल आवाज में कहते हुए बेहोश आदमी की तरफ इशारा किया। इनमें से एक ने एक बड़ा सा थैला अपने कंधे से उतारा और दो आदमियों ने इसे उठाकर इसमें ढोंस दिया। थैले का मुंह बंद बांधे के बाद वो तीनों वहीं रुक गए। गालबन इन्हें इजाजत का इंतजार था। तुम जा सकते हो, फरीदी ने हाथ उठाकर कहा। इनमें से दो ने वजनी थैला संभाला और तीसरे इनके आगे टार्च लिए हुए चलने लगा। थोड़ी देर बाद कदमों की आवाजें सनाटे में तहकीर हो गई और फरीदी एक पत्थर पर बैठकर सिगार सुलगाने लगा। आपका सुलगार पीने जा रहे हैं, अगर फौजियों में से कोई आ जाए तो? गुड, बहुत अच्छे, तुम अब सोचने लगे हो, लेकिन ये सुलगार इसी वर्दी की जेब से बरामद हुआ है, गो के ब्रांड मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी चलेगा। हाँ, आप इसी चराहे के मुतालिक कुछ बता रहे जा रहे थे। इसके मुतालिक क्या बताऊं? इसके मुतालिक मेरी मालूमात फिलहाल आसेफ की हदूद के आगे नहीं। फरीदी ने इसे जलाने और इसकी तस्वीर के मुतालिक बताया। लेकिन आपने इस तस्वीर में इतनी दिलचस्पी क्यों ली? ठहरो, तुमने कर्नल वाडेट के मुतालिक पूछा था। किसी शख्स ने जलानी की तस्वीर खरीदी है और मैं इसी का ताकुब करता हुआ यहाँ आया हूँ। और वो कहाँ है, हमीद ने पूछा। ऊपर किसी खेमे में। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। जलानी इस तस्वीर को आसेफ समझता है और वो आसेफ मुझसे फोन पर गुफ्तगू करता है और इसी आसेफ की आवाजें हमें परजा के कमरे में सुनाई दी। कमरा कर्नल वार्डेट से निस्बत रखता था और यही कर्नल वार्ड चिनारी की तस्वीर खरीदता है। हाँ खरीदता है, तो फिर अचानक वो दोनों ही उछल पड़े। पूरा गार किसी निस्वानी आवाज से गूंज उठा और दोनों आंखें फाड़ कर चारों तरफ देखने लगे। आवाज फिर आई, इस बार वो दोनों एक खनखनाता हुआ कहका था। हमीद ने आवाज साफ पहचान ली, ये आवाज थी जो फिरोजा के कमरे में सुनता था। यही आवाज इसने फोन पर भी सुनी थी। यक बेक हमीद सीने पे दोनों हाथ रख कर झुका और सीधा खड़ा होता हुआ बोला, मेरे लिए क्या हुक्म है जाने बाहर? क्या मैं इस आदमी की गर्दन उड़ा दूं? कैप्टन हमीद तुम छोटे हो, तुम इस आदमी के लिए सारी दुनिया में आग लगा सकते हो। दुए बाहर तुम्हारे नगमों ने मुझे इससे मुंतफर कर दिया है। अहमद क्या तुम ये समझते हो कि मुझे तुम्हारी इस एक्टिंग पर यकीन आ गया है? तुम्हारी आवाज में कितना रस है, हमीद बोला। इसने देखा कि फरीदी दबे पांव रू की तरफ जा रहा है। इसने इसे वहीं पे ठहरने का इशारा किया। बकवास मत करो, निस्वानी आवाज ने कहा, काश मैं तुम्हें देख सकता। कर्नल फरीदी से पूछो कि मैं कितनी दिलकश हूँ। नगर जलानी तो कहता है इसने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। नहीं, लेकिन रूहानी तौर पर वो मुझसे मुतासिर हुआ है। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं एक रूह हूँ? मुझे यकीन है रोए बाहर। काश काश मैं बाज़ुकात दिल चाहता है कि तुम्हें मिलूं, तो तुम्हें अपने दिल में छुपा लूं। इस वक्त कोई अच्छा सा फिल्मी गीत सुनाओ, वही थमक थमक नाचूंगी, होले होले गाऊंगी। हाय कर्नल क्यों खामोश हो गए? वो रूह वगैरह का काहिल नहीं है, हामिद ने चारों तरफ देखते हुए कहा। फरीदी गार में मौजूद नहीं था, शायद वो यहाँ किसी ट्रांसपेरेंट की मौजूदगी के इम्कान पर गौर कर रहा था। हो सकता है रूह बाहर, मगर मैं तो काहिल हूँ तुम्हारा। अगर मुझे तुम्हारी रूह होने पे शुबा होता तो फिरोजा को उलट कर रख देता, मगर ये बताओ कि अभी किस चक्कर में फंस गया हूँ। रूहों पर सब कुछ आया होता है, लेकिन नहीं, कायनात के राज बताने की इजाजत नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी ये आरजू नहीं पूरी कर सकूंगी। वैसे मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए काफी जगह पाती हूँ। रूहें भी दिल वाली होती हैं? हमीद ने हैरत से पूछा। जिसमें में दिल मगर नहीं हो, तुम्हें मुझ पर यकीन कब? चलो तुम यहाँ कोई ट्रांसफर तलाश करो, मुझे यकीन है। नहीं, एतमान रखो। हमीद ने चीजों को लुटना पलटना शुरू कर दिया, मगर कहीं भी इसे कोई ऐसी चीज नजर ना आई जिस पर ट्रांसफर होने का शुबा भी किया जा सकता। मैं खामखा थकना नहीं चाहता रुए बाहर, हमीद ने कहा, लेकिन अब इसकी आवाज ना आई। रुए बाहर मैं तुमसे मुखातिब हूँ, हमीद ने चीख कर कहा, लेकिन जवाब फिर नजर खुद इसकी आवाज गार के वसतों में गूंज रही थी। और वक्तन पश्च से एक गरजदार आवाज आई और हमीद चौंक कर मुड़ा। वही दोनों फौजी टायर पर सीधी किए खड़े थे जो इसे यहाँ लाए थे। कमांडर कहाँ है? एक ने गरज के पूछा। पता नहीं, मुझसे तो ये कहकर गए हैं कि मैं जरा अपनी महबूबा तक एक पैगाम पहुंचाकर आता हूँ। घेरो मारो, एक ने दूसरे से कहा और दोनों ने राइफल कंधे उठाए हुए इसकी तरफ झपटे ही थे कि दरवाजे से फरीदी बरामद हुआ। ठहरो, इसने हाथ उठाकर कहा। वो मुड़े और पीछे हट गए, लेकिन फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वहां जंजला सा आ गया हो। चार निकाब पोश किसी तरफ से निकलकर फरीदी पर टूट पड़े। फौजी दम बखुद खड़े रह गए। और तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? कमांडर को बचाओ, हमीद ने इन्हें ललकारा। लेकिन कबल इसके के वो दोनों फौजी कोई कदम उठाते, दो फायर हुए और दोनों ही वहीं ढेर हो गए। तो ये जाल बिछाया गया था फरीदी को पकड़ने के लिए, हमीद ने सोचा और इन निकाब पोशों पर पल बढ़ा जो फरीदी को बेबस कर देने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो इन दोनों फायरों के मुतालिक सोच रहा था। वो किधर से हुए थे, किसने किए थे? निकाबपोश फरीदी से जमता और कोशिश करने में लगा हुआ था। वफ्तन हमीद ने महसूस किया कि निकाबपोश इसी में दिलचस्पी नहीं ले रहे, बल्कि खामोखा इनसे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वफ्तन फरीदी के हल्क से अजीब सी आवाजें निकली और हमीद बेसाख्ता चौंक पड़ा। ये एक किस्म का इशारा साजिश का मतलब बखूबी समझता था। वो चुपचाप लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और लहराकर फर्श पर ढेर हो गया। फिर लेटे ही लेटे एक पत्थर उठाया और सर्च लाइट पर खींच मारा। दूसरे ही लम्हे अंधेरा गुप हो गया। इसने बेवक्त कई चीखें सुनी, फिर भागते हुए कदमों की आवाजें और अब फिर पहले जैसा सन्नाटा था। हमीद सीने के बल रिंगता हुआ और अदारे की तरफ बढ़ा। रूह के चकमे कासिम ने बड़ी देर तक हमीद का इंतजार किया। जब इसकी वापसी हुई तो वो खुद ही उठा और इसकी तलाश में निकल खड़ा हुआ। मगर एक मुश्किल काम था, क्योंकि चट्टानें तो दूर दूर तक आबाद थीं। इसने सोचा कि हमीद की आवाज देना शुरू कर देता हूँ, मगर फिर अक्कल आ गई कि यहाँ तो दर्जनों हमीद होंगे। पता नहीं कितने घोड़े आए और इसे खामोखा हर एक से माफी मांगनी पड़े। फिर क्या सूरत इख्तियार की जाए, फरीदी वाले हमीद भाई क्यों ना पुकारा जाए। बस ख्याल आया ही था कि जहन में किसी ने हाँक लगाई, अबे फरीदी वाले हमीद भाई। लेकिन फिर भी किसी के कान पर जूं तक ना रिंगी। वैसे किसी ने करीबी से जरूर कहा था, देखना जरा ऐसे डेल डोल वालों को भी शराब पिलाकर आखिर पटाख ही देती है। ये अल्फाज कासिम के कानों में पड़े और वो भनाकर रह गया। जी तो चाहा के साले को उठाए और किसी चट्टान पर इस तरह पटाख दे के भेजा बिखर जाए। मगर फिर इस लड़की का ख्याल आया क्या, जो हमीद के साथी थी, और वो तेजी से आगे बढ़ता चला गया। टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डालता जा रहा था। अचानक खुद इसके चेहरे पे टॉर्च की रोशनी पड़ी और इसकी आंखें चंदा गई। अबे कौन है, अबे, वो आंखों में हाथ मारकर धाड़ा। हमीद को देखा है कहीं, आने वाले ने करीब पहुंचकर पूछा। मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। आप मिस्टर कासिम शायद? जी हाँ जी हाँ। फिर फरमाइए, हमीद मेरे साथ आया था, बड़ी देर से गायब है। आप आसिफ साहब हैं? कासिम ने पूछा। आसिफ ने आने वाले की सही तस्कीद की। जी हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ। अभी हमीद भाई मिले थे, कहा था कि सबको लेकर आता हूँ, फिर गायब हो गए। मेरे पास बहुत बड़ा खैमा है, मैं अकेला हूँ। फिर आप लोग चट्टान पर क्यों, जी हाँ, पड़े हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है जनाब, आसिफ ने खुश होकर कहा। मगर आपको हमारी वजह से तकलीफ होगी। अजी तकलीफ तो कोई नहीं, मैं तो आपका खादिम हूँ जनाब। वो तो आप मेरे बुजुर्ग हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा चलें, आपका सामान वामान कहाँ है, कासिम ने बेचैनी से कहा। हमीद दूरे के करीब पहुंच चुका था, अचानक इसने इसी पुरसरार औरत की आवाज सुनी। तुमने बहुत बुरा किया कैप्टन हमीद, दुश्मनों ने फरीदी कर्नल को कत्ल कर दिया, लेकिन तुम मुझसे ही दुश्मन समझते रहे। अब अक्कल के नाखून लो, ठहरो, यहीं ठहरो। हमीद ने कोई जवाब ना दिया, जहाँ था वहीं रुक गया। बोलो तुम खामोश क्यों हो, क्या चले गए हो, बोलो, तुम मुझे करीब से देख सकोगे, मैं आ रही हूँ, वहीं ठहरो। हमीद ने सोचा कि अब वो अभी भी धोखा खा चुका है, इसी की गुफ्तगू ने इन्हें वहाँ उलझा रखा था, वरना वो गार से निकल गए होते। वो पलटकर इन दोनों लाशों के करीब आया और इनके कमरे टटोलने लगा। इनके होस्टरों में रिवॉल्वर मौजूद थे और भरे हुए थे। हमीद ने दोनों रिवॉल्वर निकाल कर ले लिए। फिर वो बड़ी तेजी से दूरे में रेंग कर गया। अपनी सांसों के अलावा और किसी किस्म की आवाज इसे नहीं सुनाई दी और दिल की धड़कनें खोपड़ी में धमक रही पैदा कर रही थी। दूसरे गार में पहुंचकर वो भूल गया था कि इसका दहाना किस समय था। इसकी टॉर्च तो अब इसकी पास ही नहीं रही थी। जेब में दिया सिलाई की डिबिया अलबत्ता मौजूद थी, लेकिन इसने इसे भी काम में लाना मुनासिब ना समझा, बस टटोल कर आगे बढ़ता रहा। अचानक इसके हल्क से एक घुटी घुटी सी चीख निकली, क्योंकि वो लड़खड़ाता हुआ न जाने किन गहराइयों की तरफ जा रहा था। एक अंधेरे में जबकि वो घुटनों के बल रेंग रहा था, इसे ऐसा महसूस हो रहा था इसके हाथों के नीचे जमीन निकल गई हो और मुंह के बल किसी नामालूम जहलान पे जा पड़ा हो। बस फिर वो लड़कता ही चला गया। इससे होश था और इसके हल्क से डरी डरी आवाजें निकल रही थी। छपाक वो अचानक पानी में जा पड़ा जो बेहद सर्द था, लेकिन जब इसके पैर तह से लगे तो जान में जान आ गई, क्योंकि वो सीधा होकर सांस ले सकता था। पानी कमर से ऊंचा नहीं था, भाव भी जतेजीम नहीं थी। इस लड़खड़ाव से इसे कितनी चोटें आईं, इसका होश इसे नहीं था। वो तो दरअसल ये बावर करने की कोशिश कर रहा था कि वो जिंदा है। वक्तन फिर इसके हल्क से एक बेसाख्ता किस्म की चीख निकली, मगर वो खासो रोशनी थी, तेज किस्म की रोशनी जो अचानक इसके आसपास फैल गई थी। ना इस रोशनी में इसे काटा था ना मारना दौड़ी थी। फिर वो चीखा क्यों? हमीद को अपनी इस कमजोरी पर गुस्सा आ गया। फिर इसे एहसास हुआ कि दोनों रिवॉल्वर अब भी इसके हाथों में दबे हुए हैं। इसने इस रोशनी में चारों तरफ एक अजनबी हुई सी नजर डाली, लेकिन ना मालूम हो सका रोशनी कहाँ से आ रही है। ये एक 8-10 फीट का चौड़ा दौरा था जिसकी पूरी चौड़ाई में शफाक पानी बह रहा था। चंद लम्हे गुजर जाने के बाद हमीद को सचमुच चौंकना पड़ा, क्योंकि अब ये बात अच्छी तरह इसकी समझ में आ गई थी कि वो रोशनी पानी की सतह से फूटकर फजा में मंशतर हो रही थी। ये कैसी रोशनी थी? हमीद का मुंह हैरत से खुल गया। किताब जासूसी दुनिया जिल्द नंबर 26 नावल नंबर 79 चांदनी का धुआं पार्ट नंबर 6 इख्तिताम पजीर हुआ। बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 7 में समाप्त फरमाइए।